अहिंसा की शिक्षा भारत के लिए कोई नई बात नहीं। सिर्फ बौद्ध और जैन धर्म में ही नहीं, अहिंसा की महिमा उनसे पहले उपनिषदों में भी गाई गई थी। कहा जा सकता है कि अहिंसा भारत की सभ्यता का सार है। इसमें कोई संशय नहीं कि अहिंसा का उपदेश भारत में इतने दिनों से दिया जा रहा है कि विश्व में भारत को अहिंसा और निवृत्ति का देश ही माना जाने लगा। लेकिन इतना सब होते हुए भी आधुनिक भारत में अहिंसा का प्रवर्तक महात्मा गांधी को माना जाता है। सन 1948 की 30 जनवरी के दिन महात्मा गांधी ने अंतिम सांसें ली और इसी माह की 23 तारीख को हम नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का जन्मदिन मनाते हैं। सुभाष चंद्र बोस ऐसे पहले शख्स थे जिन्होंने 1941 में भारत से बाहर जाकर आजादी की लड़ाई छेड़ी। इसलिए जनवरी माह के हमारे कार्यक्रम आवारा की बातें में अजय आवारा जी इन्हीं दोनों महान विभूतियों के विषय में चर्चा करेंगे। दोस्तों, हमारा उद्देश्य स्वतंत्रता प्राप्ति के योगदान में किसी के महत्व को भी कम करके आंकना नहीं है, बल्कि कुछ बातें जो हमेशा एक चुभन देती रही हैं, उन्हीं पर एक विश्लेषण करने का प्रयास किया जाएगा।
नमस्ते अजय सर।
नमस्ते भावना जी।
कैसे हैं आप?
मैं अच्छा हूँ, आप कैसे हैं?
हम भी अच्छे हैं सर, बस सर्दी बहुत हो रही है, आप जानते हैं यहाँ पर आजकल। आप लोग तो अच्छी जगह पर हो, मजे से वहाँ पर बेंगलुरु में।
आप लोगों को बेंगलोर आ जाना चाहिए, बेंगलोर का मौसम बहुत अच्छा है। आप ये लगा लीजिए करीबन 24-25 डिग्री का तापमान यहाँ चल रहा है दिन में
जी,
तो एयर कंडीशन सिटी ऐसी नहीं कहते हैं बेंगलोर को, तो वास्तव में एयर कंडीशन सिटी जैसा है कि आपको ना एयर कंडीशन चाहिए, ना पंखा चाहिए, ना कंबल चाहिए, ऐसे ही रह सकते हैं आप।
अच्छा वाह, ये तो अच्छी बात है। हाँ, आपने कभी बुलाया नहीं, तो हम सब आते, पूरी चुभन की टीम ही आती, हमारे सारे श्रोता ही आते।
मैं आपको आमंत्रित कर रहा हूँ बेंगलोर के आने के लिए। एक्चुअली मैं आपको आमंत्रित ही कर रहा हूँ और अपने श्रोताओं को भी आमंत्रित कर रहा हूँ कि वो एक बार बेंगलोर जरूर आएं और यहाँ का मौसम का लुत्फ उठाएं। और बेंगलोर का मौसम ऐसा है कि यहाँ पर सर्दी भी बहुत ज्यादा नहीं होती और गर्मी भी बहुत ज्यादा नहीं होती।
जी जी, मॉडरेट मौसम,
जैसे हाँ लू भी नहीं चलती यहाँ पर, और कहते हैं फ्रीजिंग टेम्परेचर भी नहीं होता, ऐसा होता है यहाँ पर।
जी जी।
और बेंगलोर की और भी विशेषता बहुत है। बेंगलोर जैसे सिल्क सिटी है, यहाँ पे सिल्क पैदा होता है। बेंगलोर आईटी हब तो है ही है, सब जानती है। बेंगलोर सिटी ऑफ गार्डन्स भी कहा जाता है। और एक एक कॉलोनी में यहाँ पे इतने दिन पार्क होते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते यहाँ पर। और इसके अलावा मौसम अच्छा है, पेंशनर पैराडाइज है। इसके अलावा एजुकेशन हब भी, आपको शायद लोगों को पता नहीं है कि बेंगलोर एजुकेशन हब भी बहुत अच्छा है। साउथ एशिया सबसे बड़ा एजुकेशन, साउथ एशिया सबसे बड़ा एजुकेशन हब है। और कोई मानेगा नहीं, शायद यहाँ पे 40 अकेले बेंगलोर में 40-45 मेडिकल कॉलेज, डेंटल कॉलेज
जी बिल्कुल होंगे,
हाँ इतने हैं। तो एक एजुकेशन हब के रूप में भी बेंगलोर देखा जाता है और शायद कई लोगों को पता नहीं है इस बारे में। और इसके अलावा गार्डन सिटी कहने का खास बात यह है कि यहाँ पर एक लालबाग है
जी,
जहाँ पर ऐसा माना जाता है कि पेड़ों के बारे में कि एक जगह का पेड़ दूसरी जगह पर नहीं उगता है,
जी जी
नहीं जमता है। लेकिन लालबाग में पता नहीं उन्होंने कैसे किया है कि सारी दुनिया से लाखे पेड़ वहां लगाए हैं और वहाँ हर पेड़ पे लिखा हुआ कि ये किस जाति का पेड़ है और कहा कि इस देश का पेड़ है।
अच्छा,
और यही इसकी विशेषता है। लोग जाते हैं, देख कर जाते हैं और ये विशेषता मिस कर जाते हैं, देख नहीं पाते हैं। तो अगर कोई बेंगलोर आए और लालबाग जाए तो जरूर देखें कि हर पेड़ पे लिखा हुआ कि किस देश का पेड़ है और किस जाति का पेड़ है, किस देश से आया है, वो सब लिखा हुआ है। और उसमें एक और एक विशेषता उसकी बताता हूँ मैं, जो शायद लोगों को पता नहीं होगी। कहते हैं दुनिया की पुरानी चट्टानें जो होती हैं, बहुत पुरानी चट्टानें, मानी हुई चट्टानें, और बेंगलोर लालबाग में ही एक छोटी सी पहाड़ी है जो एक एक चट्टान पे बनी हुई है
जी।
और वो शायद 2 करोड़ साल पुरानी चट्टान है।
2 करोड़?
हाँ, 2 करोड़ साल पुरानी चट्टान है। तो मतलब बेंगलोर में खाली मतलब इसकी और दूसरी इसकी ऐतिहासिक वैल्यू भी बहुत है। बेंगलोर राजा के बारे में जान जाते होंगे, टीपू सुल्तान के बारे में आप जानते होंगे, क्योंकि समर पैलेस बेंगलोर में ही था। और जो जयचंद्र जयराम राजा वाड़े बेंगलोर के ही हैं, उनका बेंगलोर में उनका कार्यालय उनका बेंगलोर में था, जबकि मैसूर में उनका महल था।
जी जी
हाँ। और बेंगलोर पहले मैसूर राज्य ही था, अब कर्नाटक राज्य हो गया, बेंगलोर हो गया। तो चलो वो तो अलग बात होगी, यही विषय की बात नहीं है।
विषय की तो नहीं है सर, लेकिन आज आपके बताने से एक बात मेरे दिमाग में तुरंत आई है और मैं सोच रही हूँ कि किसी समय हम लोग खाली बेंगलोर की, कर्नाटक की भी कर सकते हैं, या खाली आपने जैसा कहा कि बेंगलोर सिटी जो है वो अपने आप में इतनी सारी विशेषताओं को समेटे हुए, तो हम खाली इस शहर के ऊपर ही एक अपना कार्यक्रम दे सकते हैं। आवारा की बातें में हम बेंगलोर की बातें कर सकते हैं।
बिल्कुल की जा सकती है। बेंगलोर ऐसा शहर है इसमें कई विशेषताएं हैं, मतलब एक ही विशेषता किसी किसी शहर की एक विशेषता होती है, लेकिन बेंगलोर ऐसा शहर है कि जिसकी कई विशेषताएं, इस पर बात करें ही आगे। मैं आज के विषय के बारे में श्रोताओं को बताना चाहूंगा। सबसे पहले मैं श्रोताओं का अभिनंदन करना चाहूंगा कि आप मुझे सुनते हैं और मेरा मुझे प्रोत्साहित करते हैं। आज का मैं एक बड़ा ही खास विषय लेकर आया हूं। आप जानते हैं जैसे कि जनवरी में 30 जनवरी हमारे आदरणीय बापू जी का मतलब पुण्यतिथि है, और वह बहुत ही सब लोग जानते हैं इस बात को, और शायद बहुत कम लोग जानते होंगे कि इस महीने में एक और तिथि है जो एक बड़े महान व्यक्तित्व से जुड़ी हुई है, वो है 23 जनवरी। और 23 जनवरी को हमारे आदरणीय सुभाष चंद्र बोस जी का जन्मदिन है, और शायद मेरे को लगता है कि कुछ प्रतिशत लोग ही इस बात को जानते होंगे। ये तो अच्छी बात है कि इस बार गणतंत्र दिवस समारोह 23 जनवरी से शुरू किया गया और सुभाष चंद्र बोस जी की प्रतिमा का अनावरण किया गया, तो कुछ लोगों को पता चला होगा, लेकिन फिर भी ज्यादातर लोगों को पता नहीं है। और ये बड़े दुख की बात है कि दो महान विभूतियां जिन्होंने आजादी की लड़ाई में बराबर का योगदान दिया, उनमें से एक का तो हमें सब कुछ मालूम और एक का कुछ भी नहीं मालूम हम। मेरा कुछ भी नहीं मालूम मैं इसलिए कह रहा हूँ कि सुभाष चंद्र बोस के बारे में हम जितनी बात करते हैं वो उनके योगदान की तुलना में कुछ भी नहीं है।
बिल्कुल ठीक कह रहे हैं।
हाँ, आप ये समझ लें, आप अगर उन्होंने 100% योगदान दिया तो हम 2% बात भी नहीं करते।
और मैं यहाँ पर एक बात आपसे और कहना चाहूंगी सर, कि आप देखते होंगे कि जब 2 अक्टूबर को हम गांधी जयंती मनाते हैं तो बचपन से ही हम लोगों को बस ये पता होता है कि महात्मा गांधी की जयंती और हम उसको मना रहे हैं, और उसी दिन लाल बहादुर शास्त्री जी की भी जयंती होती है। ये बात इधर 2-3 सालों से थोड़ा सामने आने लग गई है, न तो पहले इन सब बातों का सुभाष चंद्र बोस जी का, भगत सिंह का और लाल बहादुर शास्त्री जी की, जबकि लाल बहादुर शास्त्री भी कोई कम व्यक्तित्व नहीं है, उन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया और देश के हमारे ऐसे प्रधानमंत्री यशस्वी प्रधानमंत्री रहे, वो भी उनके समय में कई सारे कार्य हुए, लेकिन किसी को इतना ज्यादा मतलब क्या कहा जाए कि इन लोगों को एकदम नकारा गया, ये शब्द कहना गलत होगा, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि उनको आप जैसा कह रहे हैं कि वो सम्मान नहीं मिला जिसके वो हकदार थे।
हम नकारा गया ही बोलेंगे, क्योंकि लाल बहादुर शास्त्री ऐसा व्यक्तित्व है जिनके कारण भारत सामरिक रूप से आज आत्मनिर्भर है, तो शुरुआत लाल बहादुर शास्त्री जी ने की थी। और अगर भारत खेती बाड़ी के रूप में आज आत्मनिर्भर है और इतना विकसित है, तो उसका श्रेय भी लाल बहादुर शास्त्री को जाता है। हमारी मुश्किल क्या है कि हमारे राजनेताओं की मुश्किल क्या है कि हम एक रीति पर चलते हैं, एक नीति पर चलते हैं और उसी को चलते रहते हैं। हम दाएं बाएं मुड़कर देखते भी नहीं है कि इसके आगे पीछे भी कुछ है।
मैं आपसे और चर्चा इस विषय पे करना चाहूंगी कि हम एक ही दिशा पे चलते चले जाते हैं, लेकिन उस दिशा पे हमें चलाया गया होगा ना, क्या कारण है कि शुरू से ही, मतलब मैं तो आप लोग, आपसे भी पहले की जो जनरेशन रही होगी, आप लोगों के माता पिता के समय के, वो लोग भी मतलब खाली एक ही व्यक्ति की पूजा, एक ही व्यक्ति की पूजा, और बाकी लोगों को वहीं आपके वाली बात की नकार दिया, तो ऐसा क्यों हुआ? इसके पीछे कोई राजनीति है?
उसका कारण बताता हूँ मैं क्या है। भारत में एक बहुत मुश्किल एक बात है ये कि हम किसी दूसरी विचारधारा का सम्मान नहीं करते। देखिए, अगर मेरी एक विचारधारा है तो मुझे अपनी विचारधारा पर गर्व करने का अधिकार है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि अगर भावना जी की अगर कोई विचारधारा है तो मैं उसका सम्मान ना करूं। हो सकता है मैं आपसे सहमत ना हूं, लेकिन मैं आपको सम्मान कर रहा हूं, मेरा कर्तव्य बनता है, क्योंकि अगर आपका विचार है तो उसमें भी तो कुछ पॉइंट होंगे ही।
बिल्कुल
है ना। अब ये हमारे राजनीतिक व्यवस्था में ऐसा बहुत गलत ही परंपरा रही है कि हम अपने विचारधारा को तो बढ़ाते हैं लेकिन दूसरे की विचारधारा को बिल्कुल नकार देते हैं। तो हम मंथन करें कि उसकी विचारधारा में मंथन कर सकते हैं कि क्या सही है क्या गलत है, लेकिन नकार देना गलत चीज है, क्योंकि कोई भी विचारधारा पूरी तरह से गलत या पूरी तरह से सही नहीं होती। तो जो विचारधारा चल रही है वो भी पूरी तरह से सही नहीं हो सकती, और जो विचारधारा नकारी जा रही है वो भी पूरी तरह से गलत होगी, ऐसा नहीं हो सकता। तो हम मंथन करते ही नहीं, हम नकार के चलते हैं। ये एक बड़ा ही गलत बात है कि हम दूसरी विचारधारा को नकारने चलते हैं, और इसी कारण से ये होता है कि हम ना तो हम अपने क्रांतिकारियों को वो सम्मान दे पाए हैं, ना शास्त्री जी को सम्मान दे पाए हैं, और ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने आजादी के इस आंदोलन में बहुत कुछ किया, लेकिन हम उनको जानते भी नहीं है, क्योंकि हमारी राजनीति उन विचारधारा को नकार कर ही चलती रही है, और जब नकार के चलती रही है तो उसके बारे में सूचना भी नहीं है, पाठ्यक्रम भी नहीं है, और कोई कार्यक्रम भी नहीं है, कोई मतलब ऐसा सरकार की ऐसा कोई तंत्र नहीं है कि हमें कुछ ज्ञान मिले उसके बारे में। और चूंकि सरकारी तंत्र नहीं है तो सामाजिक स्तर पर भी उस पर कोई बातचीत या वाद विवाद नहीं होता है।
जी जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अकबर द ग्रेट को हमको पढ़ाया गया लेकिन शिवाजी और महाराणा प्रताप द ग्रेट ये हम नहीं जान पाए। तो जब नहीं जान पाए हमारे संस्कारों में ही नहीं आया, तो अब जब कुछ बातें हमें पता चलती है तो मन में एक अंदर से रोष भी आता है और बहुत ज्यादा क्या कहा जाए कि विडंबना है ये हमारे साथ।
मेरा मानना ये है, ये मेरी व्यक्तिगत राय है, मेरा मानना ये है कि जैसे हम बात बोलते हैं कि भारत एक सेक्युलर कंट्री है, लेकिन हम सेक्युलर नहीं है।
बिल्कुल
सेक्युलर तब होते हैं जब मैं अपने धर्म का सम्मान करता हूँ और आपके धर्म का भी सम्मान करता हूँ।
बिल्कुल
लेकिन गाय बगाय ऐसा हो रहा है कि हम अपने धर्म को तो आप प्राथमिकता देते हैं लेकिन दूसरे धर्म से नफरत करते हैं, चाहे कोई भी धर्म लगा लीजिए, हम सम्मान देते ही नहीं है। और जब हम सम्मान देते ही नहीं है दूसरे विचारधारा को या धर्म को या दूसरे समूह को या वर्ग को, तो हम सेक्युलर कैसे हुए? हम नाम के लिए सेक्युलर हो सकते हैं लेकिन मानसिकता से हम सेक्युलर नहीं है, आज भी बैठे हुए हैं।
या हमारे तो सर कभी कभी उल्टा भी होता है, हम अपने धर्म का निरादर करके दूसरे के धर्म को ज्यादा आदर देकर सोचते हैं कि हम ज्यादा धर्म निरपेक्ष हो गए। ये भी चीज है हमारे देश में हमारे साथ।
उसका कारण ये है, उसका कारण ये हम अपने आप को ज्यादा सेक्युलर दिखाने के चक्कर में ऐसा करते हैं।
जी बिल्कुल,
हमें सेक्युलर दिखाना नहीं है, होना है। सेक्युलर दिखाने का मतलब ये नहीं होता कि हम अपना अपमान करें, और सेक्युलर का मतलब ये भी नहीं होता कि हम दूसरे का अपमान करें। तो हमें अपना सम्मान और दूसरे का सम्मान दोनों का करना है, तभी हम सेक्युलर माने जाएंगे। और ये बड़े दुख की बात है कि हमारे विचारधारा में ये दोनों अपना सम्मान और दूसरे का सम्मान ये शब्द नहीं है।
जी जी,
अपना अपमान करना ही हम सेक्युलर मानते हैं, ये बहुत एक बड़ी गलत बात है। और इसका आपने देखा होगा कि क्योंकि एक विचारधारा को आगे बढ़ाया गया है, तो बापू जी ने मानते हैं कि गांधी जी ने बहुत ही उन्होंने योगदान दिया, बहुत अहम योगदान दिया, गांधी आजादी हमें उनके कारण मिली। लेकिन किसी भी चीज को प्राप्त हम करते हैं तो उसका एक पक्ष नहीं होता है, कोई चीज एक ही तरह से नहीं पाई जाती है। अगर हम गाड़ी भी चलाते हैं, एक वाहन भी चलाते हैं या खाना भी खाते हैं तो एक तरह से नहीं होता है। अब जब बात है कि साम्राज्य से लड़ने की, गांधी जी ने कहा था कि साम्राज्य से लड़ाई करी और हमें आजादी दिलाई, जब साम्राज्य से लड़ने की बात आती है उसके कई पहलू और भी आते हैं जो हमने शायद कभी सोचे ही नहीं है। उदाहरण के तौर पर ये लगाइए, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन चलाया, असहयोग आंदोलन का पक्ष ये था कि जनता उनसे सहयोग ना करे।
जी जी।
अब किसी भी शासन की दो तीन व्यवस्था होती है, वो जनता उसका एक हिस्सा होता है, जनता के कल्याण के लिए जो कार्य किया जाता है जनता के लिए किया जाता है। लेकिन एक सामरिक शक्ति भी होती है, जनता कितनी भी देशभक्त हो, जनता कितनी भी अच्छी हो, लेकिन अगर सामरिक रूप से अगर कोई शासन मजबूत ना हो तो वो शासन टिक नहीं पाता, क्योंकि जनता थोड़ी लड़ने जाएगी, लड़ने तो सेना ही जाएगी ना।
बिल्कुल
है ना। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो दूसरे देशों से हमें सहयोग लेना है, उनसे हमें अपने संबंध स्थापित करने हैं, वो जनता नहीं करती, वो शासन करता है, वो सामरिक स्तर पर होता है।
और लड़ाई
तो किसी भी शासन,
और लड़ाई भी उस समय हमारी किससे थी जो 100 वर्ष तक हमारे ऊपर जिन्होंने शासन हाँ, किया था और जब जो हर तरह से समर्थ थे, हमसे शक्तिशाली थे।
उन्होंने सिर्फ हम पर 100 वर्ष शासन नहीं किया, उन्होंने पूरी दुनिया, ऐसा कहा जाता है कि अंग्रेजों के शासन में कभी सूरज डूबता ही नहीं था।
जी बिल्कुल,
उन्होंने पूरे विश्व पर शासन किया, तो उनसे लड़ने का आसान नहीं था। तो हम ये कहें कि सिर्फ हमें सिर्फ भारत में सहयोग करके उनको झुका दिया, नहीं, ये बात नहीं मानी जा सकती, क्योंकि सहयोग से क्या होता, उनके और देशों में भी शासन थे, है ना। तो सिर्फ एक छोटे एक हिस्से में सहयोग कर उनको जनता से मिलता है तो उनको क्या फर्क पड़ता है इससे। इसके लिए बहुत ही आवश्यक था कि उनको सामरिक रूप से कमजोर किया जाए, और ये काम हमारे क्रांतिकारियों ने किया है। आंतरिक रूप से उनको कमजोर किया, उनको हमारे जो हमारे लोकल क्रांतिकारी थे, भगत सिंह जी थे, चंद्रशेखर आजाद थे, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनके खिलाफ गुटबंदी की हमारे माननीय सुभाष चंद्र जी ने
जी।
अगर वो एक सेना स्थापित नहीं करते और एक गुट नहीं बनाते, जैसे जापान और जर्मनी को उन्होंने कहते हैं अंग्रेजों के खिलाफ खड़ा किया, उनको गुट बनाया, और यही कारण था कि द्वितीय विश्व युद्ध में अंग्रेजों के खिलाफ जापान और जर्मनी लड़े। अगर जापान और जर्मनी उनके खिलाफ नहीं लड़ते तो सामरिक रूप से कमजोर नहीं हो पाते।
जी जी।
अगर हम ध्यान दें, हमारा असहयोग आंदोलन और आजादी की लड़ाई हमारी द्वितीय विश्व युद्ध से पहले चलती आई है, और जहां तक मेरा विचार है कि द्वितीय विश्व युद्ध से पहले इसके कई आयाम रहे हैं, जैसे नमक सत्याग्रह रहा है, विदेशी कपड़ों की होली रही है, और हमारे कई चीजों त्याग हमने किया है, लेकिन तब भी अंग्रेज झुके नहीं, बात करने नहीं आए।
जी।
सोचने वाली बात यह है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ऐसा क्या हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध बात के बाद ऐसा तो कुछ नहीं किया गया कि हमने कुछ नई चीज जोड़ी हो, फिर भी वो कथा हमारे साथ बातचीत की टेबल पर कैसे आ गए, ये शायद किसी ने नहीं सोचा, क्योंकि वो द्वितीय विश्व युद्ध में इतने कमजोर हो गए थे कि उन्हें लग रहा था कि अब हिंदुस्तान पे शासन चलाना मुश्किल है, असंभव है, हम ये नहीं कर पाएंगे, इसलिए उन्होंने कहते बातचीत की। वास्तविकता ये है कि सुभाष चंद्र बोस जी ने उनके खिलाफ जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक गुटबंदी बनाई थी, उसके कारण अंग्रेज इतने कमजोर हो गए थे कि शासन चलाने में असमर्थ थे, तो उन्हें जाना ही था। उन्होंने अपनी विदाई को सम्मानजनक नाम देने के लिए ये नाम दे दिया कि हम भारत को आजादी दे रहे हैं, तो उन्होंने अपना अपमान बचाया। अगर भगाए जाते तो क्या होता,
मतलब कह सकते हैं कि गांधी जी के अहिंसा का जो आंदोलन था उसमें एक तरह से पूरक की तरह इन क्रांतिकारियों के कार्यों को हम कह सकते हैं कि इनके दबाव बनाया।
खाली पूरक नहीं कह सकते, बराबर का माना जाएगा, पूरक तो मेन गांधी जी का था, उनका था। गांधी जी का आंदोलन बिल्कुल सही था, क्योंकि जनता का सहयोग जो था वो एक विषय था, है ना, लेकिन ये आधा था, इसका आधा हिस्सा वही था। देखिए गांधी जी का कार्यक्रम इसलिए लाइमलाइट में आ गया, गांधी जी की जो भी असहयोग की बात होती थी वो मंचों पर होती थी
जी,
और गलियों में होती थी, दिखती थी, लेकिन जो सामरिक दृष्टि से जो कहते फैसले लिए जा रहे, जो सुभाष चंद्र बोस ने सेना बनाई होगी, जो लोगों देशों से जाके मिले हैं, जो लोगों से
उन्होंने
वो सबको बता के तो नहीं करते, लुक छुप के करते थे, चुपचाप करते थे, और वो बताए नहीं जाते
जी जी,
है ना, और सेना की जो कथन गतिविधियां होती थी वो बताई नहीं जाती थी, तो आप ये कह सकते हैं कि चूंकि वो गतिविधियां बताई नहीं गई, छुपा के रखी गई, और हमने कोशिश नहीं की उनको जानने की, हमने इतना दिमाग भी नहीं लगाया कि अगर वो गतिविधि हुई थी तो कैसे हुई होगी। गतिविधि हुई तो अगर बर्मा में उन्होंने आजादी का जश्न मनाया था और उन्होंने बर्मा में अटैक किया था अंग्रेजी सेना पर, तो कुछ कार्यक्रम रहा होगा ना पहले, हमने ये दिमाग लगाया ही नहीं कि वो अगर हमला हुआ था, लड़ाई हुई थी और इतना अंग्रेजों को कमजोर किया गया था, तो उसके पीछे क्या कार्य प्रणाली रही होगी, क्या बात रही होगी
जी।
हमने इसको जानने की कोशिश ही नहीं की, हमने तो यहाँ तक इवन सुभाष चंद्र बोस से क्या हुआ ये जानने की कोशिश भी नहीं की, तो उन्होंने कार्य कैसे किया इसको हम कैसे जानते
जी।
तो हमने इस पर कार्य किया ही नहीं है, और जाने अनजाने हमने अपने क्रांतिकारियों को उनको जो सम्मान मिलना चाहिए था वो सम्मान हमने नहीं दिया, जिन्होंने सामरिक रूप से अंग्रेजों को कमजोर करने का कार्य किया
जी।
वो उनको हम भुला बैठे हो। अगर अंग्रेज सामरिक रूप से कमजोर नहीं होते तो जनता का सहयोग को तो शायद वो दबा भी लेते।
अच्छा,
मैं उदाहरण देता हूँ
जी, सर
बताएं। 1952 का विद्रोह आपने सुना, 1854 का विद्रोह आपने सुना होगा आपने
जी, 1857 का,
सॉरी 1857 का विद्रोह, 1857 का विद्रोह जब तो जनता ने किया था और सामरिक तौर पर भी था, दोनों चीज उसमें शामिल थी
जी जी,
युद्ध भी था और जनता भी थी, फिर वो क्यों नहीं सफल हुआ
जी,
क्योंकि अंग्रेज मजबूत थे सामरिक तौर पर, लेकिन जब सुभाष चंद्र बोस ने पूरी गुटबाजी इनके खिलाफ खड़ी कर दी और दूसरी विश्व युद्ध में यहाँ ये अपने कमजोर हो गए, तब ये कमजोर होने के बाद हमें आजादी दी है, क्योंकि 1857 विद्रोह में कमजोर नहीं थे
जी जी,
वो तो पूरी तरह से अंदर का विद्रोह था, तो आप 1857 विद्रोह जो जनता का विद्रोह था और सामरिक भी था, और जबकि आजादी की लड़ाई गांधी जी का कार्यक्रम तो कहते सिर्फ आंतरिक था, उसमें सामरिक तो था ही नहीं इसमें
जी,
फिर एक हिस्सा एब्सेंट होते हुए भी ये कैसे हुआ, ये हमने सोचा ही नहीं है ना, उस समय अंग्रेज मजबूत थे, इस समय और 1944 में अंग्रेज कमजोर थे।
अच्छा, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के जो इन्होंने हंसते हंसते फांसी के तख्तों पर ये लोग झूल गए, इन सब चीजों ने भी तो मनोबल को तोड़ा होगा अंग्रेजों के।
बिल्कुल बिल्कुल फर्क पड़ता है, देखिए जब हम सामरिक शक्ति की बात करते हैं तो एक तो सेना होती है और एक अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति होती है और एक लोकल स्तर पर पुलिस व्यवस्था होती है जो कि हमें इसको हैंडल करती है। पुलिस जब चंद्रशेखर जी और ये भगत सिंह ने जो कहते हैं इन्होंने इनका जो रोष था जोश था इनका इससे जोश से जिसकी जोश से पुलिस व्यवस्था तो कमजोर हुई सुभाष चंद्र जी के कारण, कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कूटनीतिक तौर पर अंग्रेज अलग थलग पड़े और सैन्य रूप में कमजोर हुए, तब जाके 1857 वाला विद्रोह वाली कहानी यहाँ दोहराई नहीं जा सकी, और सिर्फ असहयोग के आधार पर भी वो बातचीत के पर हमारे आगे आगे आने तैयार हुए, ये किसी ने नहीं कहा कि अब अंग्रेज क्यों बोलेंगे हम कमजोर हो गए इसलिए हम बात कर रहे हैं
जी जी, दबाव तो बना ना, दबाव की स्ट्रेटजी थी इन लोगों की क्रांतिकारियों की और वो उसमें कामयाब रहे।
देखिए इसमें क्या हुआ है, जहां तक मुझे पता है कि सुभाष चंद्र बोस और क्रांतिकारी जो थे और जो गांधी जी थे इनका जो उद्देश्य अलग नहीं था, उद्देश्य एक ही था। उद्देश्य दोनों का था कि आजादी दिलाना, ठीक है ना। अब ऐसा सुना जाता है कि गांधी जी तो मानते थे कि हमें आजादी धीरे धीरे करके मिले, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। मेरा व्यक्तिगत तौर पर मानना क्या है, मानना कि अंग्रेज अगर एक धीरे धीरे आजादी देते भी तो क्या देते, एक अधिकार एक बार देते, एक अधिकार एक बार देते, एक अधिकार एक बार देते, है ना। सारे अधिकार मिलने के बाद भी मालिक तो वही रहते हैं ना। और आजादी तब होती है जब आपके ऊपर से मालिकाना हक खत्म होता, तभी तो आजादी होती है।
जी जी, आपने ठीक कहा। महात्मा गांधी और कांग्रेस जो है वो धीरे धीरे चाहते थे आजादी, लेकिन इसी बात पे इन लोगों का कॉन्फ्लिक्ट था आपस में, जो सुभाष चंद्र बोस जी का और इनका महात्मा गांधी का।
तो इनका इनका उद्देश्य एक ही था, क्रियान्वयन अलग था। सुभाष चंद्र बोस ने क्या कहना था कि आप लड़के ही आजादी ले सकते हैं, और गांधी जी कहना था कि असहयोग से ले सकते हैं। और मेरा मानना है कि दोनों आवश्यक थे, और सुभाष चंद्र बोस जी ने, क्रांतिकारियों ने, भगत सिंह जी ने, चंद्रशेखर ने अपना कर्तव्य बखूबी निभाया, लेकिन दुख की बात यह है कि उन्होंने अपना कर्तव्य पर्दे के पीछे रह के निभाया, इसलिए हम जान नहीं पाए होंगे। और ये हमारे देश के लिए शर्म की बात है कि हम अपने क्रांतिकारियों को वो सम्मान दे ही नहीं पाए जो सम्मान के अधिकारी हैं। और ये अच्छी बात है कि आज सुभाष चंद्र बोस का जो मूर्ति उनके इस बार अनावरण किया गया, लेकिन बाकी क्रांतिकारियों का क्या, उनका हम क्या कर रहे हैं।
जी जी,
अगर आज चंद्रशेखर आजाद की मूर्ति किसी पार्क में मिलेगी, बिल्कुल अकेली सी, ना उस पर कुछ तो और मिलेगा, ना सजावट मिलेगी, ना कुछ मिलेगी, कुछ नहीं मिलता उसको।
जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं।
और यहाँ तक चंद्रशेखर आजाद की जब उनकी बरसी होती है या जब उनकी जन्मतिथि होती है, उस पर भी उस मूर्ति पर हार पड़ता है, नहीं पड़ता, आधी मूर्ति पर हार नहीं पड़ता।
ठीक कह रहे हैं,
ये हमारी बात है। हम ये बात हम हमें मेरा मानना ये, हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि अगर गांधी जी हमारे राष्ट्रपिता हैं तो क्रांतिकारी हमारी माता से कम नहीं है।
बिल्कुल ठीक कहा सर आपने, ये आपने बहुत सही बात की।
हाँ, क्योंकि हमें जीवन में आगे बढ़ने के लिए पिता की सुरक्षा और माता का सहयोग चाहिए होता है। तो क्रांतिकारी न होते तो शायद पिता का सहयोग अधूरा रह जाता।
और उन दोनों में आपस में भी वैचारिक मतभेद था या नहीं था? मतलब आपने जैसा कहा कि उद्देश्य तो दोनों का एक ही था, दोनों का क्या, सारे क्रांतिकारियों का और महात्मा गांधी का, सभी का एक उद्देश्य था देश को आजादी दिलाना। लेकिन वैसे देखा जाए तो सुभाष चंद्र बोस पहले व्यक्ति थे जिन्होंने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा था।
उनके मन में सम्मान था बापू जी के लिए, लेकिन उनको ये शायद उस समय की राजनीतिक व्यवस्था, कुछ शायद राजनीतिक स्वार्थ ऐसा रहा होगा कि उनके बीच में दूरियां दिखाई गई। अगर वो दूरी उनके बीच में दिखाई नहीं जाती तो शायद दो अलग अलग धड़ ना बनते, और शायद जो राजनीतिक महत्वाकांक्षा कुछ लोगों की रही है वो शायद पूरी ना होती। तो ये जैसे कहते हैं कि आज हम कहते हैं कि राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के कारण नेता सही निर्णय नहीं ले पाते, ये बात आजादी से पहले भी रही है। व्यक्तिगत राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं तब भी रही है, और ऐसा हुआ है कि अपनी महत्वाकांक्षाओं के कारण गांधी जी और सुभाष चंद्र जी को दूर किया गया है, वो दूर हुए नहीं थे। देखिए, अगर कोई कार्य करने में अगर आपका एक तरीका मेरा एक तरीका, तो अधिक आप अपना तरीका किसे कीजिए, मैं अपने तरीके से करता हूँ, दोनों सहयोग तो कर सकते हैं ना अंदर से।
जी जी,
लेकिन ऐसा क्यों हुआ कि दोनों में सहयोग ही नहीं था आपस में?
अच्छा सर, ये भी कहा जाता है कि जो 23 मार्च 1931 को जब भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी गई, तो महात्मा गांधी और नेताजी के बीच मतभेद और बढ़ गया, क्योंकि नेताजी को लगता था कि अगर गांधी जी चाहते तो ये फांसी रुक जाती, और उधर नेताजी का जो क्रांतिकारी स्वभाव था वो महात्मा गांधी को नागवार गुजरने लगा। अब ये सब बातें भी थी, तो उनके बीच में टकराव की स्थितियां तो बनती रहती थी इन सब बातों को लेकर, जो कहीं किसी हद तक ठीक भी थी, क्योंकि जैसा भी आप कह रहे हैं अपनी महत्वाकांक्षा, तो कुछ लोगों ने सेल्फ इमेज के लिए कि हम अच्छे बने रहे, इसके पीछे बहुत से लोगों का त्याग इस देश ने सहा है।
हाँ, ऐसा हुआ, राजनीतिक महत्वाकांक्षा बहुत ही ज्यादा हावी रही है। ये मैं ये कहता हूँ कि आज की स्थिति में नहीं, आजादी से पहले भी राजनीतिक महत्वाकांक्षा हावी रही है। और इवन कहा था भगत सिंह के बारे में, अगर गांधी जी अनशन कर लेते उस समय, उसमें अंग्रेजों पर दबाव डालते तो शायद फांसी चल जाती। और एक और बड़ा ही मशहूर नाम है वीर सावरकर जी का। ऐसा कहा जाता है कि वीर सावरकर जी के ऊपर आज तंज कसा जाता है कि उन्होंने माफीनामा मांगा था। और ऐसा भी पढ़ने में आया है कि कुछ उल्लेख मिलते हैं कि सावरकर जी ने माफीनामा गांधी जी के कहने पर लिखा था।
बिल्कुल,
अब अगर गांधी जी में इतनी शक्ति थी कि वो वीर सावरकर जी के से माफीनामा लिखा कर उसको छुड़वा सकते थे, तो छुड़वाया तो नहीं, माफीनामा लिखवा दिया और उनके ऊपर कलंक लग गया बेकार। लेकिन काला पानी सजा गांधी जी ने नहीं भुगती है, सावरकर जी ने भुगती है, ठीक है ना। भगत सिंह जी का अगर गांधी जी किसी और के लिए अनशन कर सकते थे, तो गांधी भगत सिंह जी के लिए अनशन क्यों नहीं किया उन्होंने?
जी
तो शायद शायद गांधी जी के बीच में और क्रांतिकारियों के बीच में जो तालमेल होना चाहिए था वो तालमेल इसलिए नहीं था कि कुछ स्वार्थी नेता बीच में आ गए थे, जो अगर उनके बीच में तालमेल होता तो उन स्वार्थी नेताओं का स्वार्थ पूरा नहीं हो पाता।
अगर मैं गलत नहीं कह रही हूँ सर तो मुझे कहना पड़ेगा कि काला पानी की सजा या मौत की सजा, फांसी के तख्ते पर झूलना, ये जिन लोगों ने किया उनके नामों को हम लोगों ने भुला दिया और बाकी लोगों को हम लोगों ने ज्यादा याद रखा, ये हाँ, कह सकते हैं।
अशोक आंदोलन में आप कानूनी रूप से इसलिए बचे रहे कि आपने कुछ भी गलत नहीं किया कानूनी रूप से
जी,
लेकिन काला पानी में जाके वहां की सजा भुगतना, वो पीड़ा यातना सहन करना, वो ज्यादा कतई सम्मानित है।
अरे बहुत ज्यादा सर, वहां तो देख के आंखें भर जाती हैं बिल्कुल।
अपने अपने जीवन को खत्म कर देना ज्यादा सम्मानित है ना। आपने जनता से सहयोग लिया, जनता से सहयोग लिया, आपने आपने गलत विचार दिया, सहयोग किसने किया आपको, एक आपके विचार में सहयोग जनता ने किया है
जी,
है ना। तो इस मामले में हम एक विचारधारा को सम्मान दें और एक विचारधारा को सम्मान ना दें, ये हमारी गलती है।
बिल्कुल ठीक है,
किसी भी देश में जो क्रांतिकारी होते हैं उनको ज्यादा सम्मान दिया जाता है और हमने क्रांतिकारियों को बिल्कुल भी सम्मान नहीं दिया है। और ये मुझे मानना पड़ेगा कि इस सरकार ने ऐसा कुछ किया कि हमारा थोड़ा ध्यान क्रांतिकारियों की तरफ जा रहा है। और मैं चाहता हूँ कि ऐसा कुछ हो कि क्रांतिकारियों को भी बापूजी के समकक्ष सम्मान दिया जाए।
जी बिल्कुल ठीक कहते
हैं, क्योंकि क्योंकि हम बात बापूजी की विचारधारा की करते तो हैं, अब लेकिन बापूजी की विचारधारा का हम सम्मान नहीं करते, उनको फॉलो नहीं करते। फॉलो कैसे नहीं करते, बापूजी का कहना ये था कि कांग्रेस आजादी दिलाने के लिए है और आजादी की मिलकर कांग्रेस खत्म हो जानी चाहिए,
कोई राजनीतिक दल नहीं थी कांग्रेस।
हाँ, लेकिन आजादी के बाद कांग्रेस खत्म क्यों नहीं की गई, क्योंकि कुछ लोग राजनीतिक फायदा लेना चाहते थे इसलिए खत्म नहीं की गई ना
जी जी।
और उसका फायदा भी दिखता, आज भी कांग्रेस के लोग ये क्लेम करते मिल जाते कि हमने आजादी दिलाई
जी जी।
आजादी दिलाई अगर एक पूरा कहते पूरा जन आंदोलन था तो कांग्रेस इसमें अकेली कहां से आ गई, जन आंदोलन था नहीं तो।
नहीं सर, वो कांग्रेस जो थी वो तो देश की आजादी के लिए बनी हुई एक वो थी, उसको आप कांग्रेस पार्टी राजनीतिक तो नहीं कह सकते हैं ना।
लेकिन 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 आज की कांग्रेस के कुछ नेता ये क्रेडिट लेते मिल जाते हैं,
मिलते हैं
कांग्रेस के कारण आजादी, तो मतलब ये आप ये कह सकते हैं कि इनको हमारे क्रांतिकारियों को सम्मान इसलिए नहीं मिला कि कुछ नेताओं की व्यक्तिगत स्वार्थ की भावना जो थी वो हावी रही
जी बिल्कुल।
और उनके उनके व्यक्तिगत स्वार्थ के कारण उन्होंने दूसरी विचारधारा को सम्मान दिया ही नहीं। देखिए आजादी लड़ाई में मेरा विचार अलग हो सकता है, आपका विचार अलग हो सकता है, लेकिन सम्मान विचारधारा तो दोनों की थी ना
जी,
है ना। ये तो नहीं कह सकते कि अगर मैंने असहयोग किया तो जो क्रांतिकारी को हम सम्मान देना हमारे कर्तव्य नहीं बनता, तो हम उनका अपमान कैसे कर सकते हैं। हम वीर सावरकर का अपमान करते हैं तो ये गलत बात है ना, हम विचारधारा को कैसे नकार सकते हैं
जी जी।
वीर सावरकर ने, भगत सिंह ने, इन्होंने आंतरिक रूप से कमजोर किया तो था अंग्रेजों को
जी।
देखिए मैं सीधा सा आपको उदाहरण देता हूँ, हम आप किसी भी बाहुबली आदमी के पास जाके हाथ जोड़कर कहें कि महोदय आप मेरा एक काम कर दीजिए, क्या कर देगा आपका काम?
बिल्कुल नहीं
करेगा वो, जब तक नहीं करेगा जब तक आप उसके समकक्ष ना हो। कभी भी कोई भी व्यक्ति किसी का काम तभी सुनता जब उसके समकक्ष होते हैं। अगर हमारा आंदोलन उनके अंग्रेजों के समकक्ष होता तो 1857 में ही आजादी मिल जाती या तो हमें, और या फिर 1942 से पहले जब विश्व युद्ध हुआ था उससे पहले आजादी मिल जानी चाहिए थी, क्योंकि आंदोलन तो ज्यादा पुरजोर स्तर पर पहले चला था। 44 के बाद तो आंदोलन में वो तीव्रता थी ही नहीं, क्योंकि वो कमजोर हो गए थे इसलिए हम उनके समकक्ष, वो हमारे समकक्ष नीचे उतर गए थे, इसलिए उन्होंने अपने लिए सम्मानजनक विदाई तैयार कर ली, ना कि हम आजादी दिए।
ठीक कह रहे हैं, सुभाष चंद्र बोस के लिए हम लोग पढ़ते हैं कि वो हिटलर से मिले जाकर जर्मनी जापान सारे देशों को उन्होंने एक किया और अपने भारत के पक्ष में उन लोगों को खड़ा किया जिससे कि अंग्रेज जो है वो कमजोर हुए। और वैसे भी सुभाष चंद्र बोस जी की लड़ाई अंग्रेजों की अपेक्षा उनकी उस मानसिकता से ज्यादा थी जो भारतीयों को दास के रूप में देखती थी, क्योंकि अंग्रेजों की दासता उनको बिल्कुल भी नहीं स्वीकार थी सुभाष चंद्र बोस जी को।
इसीलिए तो उन्होंने आजादी क्रमबद्ध नहीं चाहते थे ना, पूरी आजादी चाहते थे। अब कई लोग आज ये आरोप लगाते हैं कि कहते सुभाष चंद्र बोस हिटलर से मिले, ठीक है हिटलर अच्छा आदमी था बुरा आदमी था, लेकिन हमें तो अपना काम करना था ना।
बिल्कुल,
हमारी लड़ाई जिससे थी हम उसके खिलाफ कैसे लड़ेंगे।
बिल्कुल
है ना, तो क्या हम हिटलर अच्छा आदमी था या बुरा आदमी था, लेकिन हमें गुटबाजी कैसे, हम एक आंदोलन जो सैनिक आंदोलन कैसे खड़ा करते हैं अंग्रेजों के खिलाफ।
अपने देश के लिए तो मिले, अपने देश के लिए
हम हिटलर से मिले वो गलत आदमी था। हम जापान से अच्छे रिलेशन है हमारे, और जापान 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 से मिले थे तो हम कहें जापान के मिले तो अच्छा था और हिटलर से मिले तो गलत था, ऐसा नहीं हो सकता। वो तो उस समय स्थिति क्या रही थी, उस समय क्या चीज काम करने वाली थी, उस समय उनके खिलाफ क्या किया जा सकता था, वो समय के हिसाब से फैसला लिया गया है, उस पर आज टिप्पणी करना गलत बात है।
बिल्कुल, जो हम जानते नहीं उसके लिए हम कैसे कुछ बोल सकते हैं।
हाँ, तो सामरिक रूप से इन्होंने कमजोर किया अंग्रेजों को, तब आजादी हमें मिली है, ना कि सिर्फ असहयोग एक हिस्सा जरूर था, बिल्कुल उसका बराबरी का हिस्सा था, लेकिन सिर्फ असहयोग से आजादी मिली ऐसा नहीं मानना चाहिए। और मेरा मानना यह है कि हमें क्रांतिकारियों को भी इतना ही सम्मान देना चाहिए जितना महात्मा गांधी जी को सम्मान मिलता है।
बिल्कुल ठीक है सर।
इसलिए मैं तो आज श्रोताओं से ये अनुरोध करूंगा इस कार्यक्रम के माध्यम से कि हम महात्मा गांधी का सम्मान जरूर करें, उनके उपदेशों को पालन जरूर करें, क्योंकि उनके उपदेश हमारे जीवन में बहुत काम के हैं। लेकिन इसका अर्थ ये कतई नहीं बनता कि हम अपने क्रांतिकारियों को नजरअंदाज कर दें। हमारे कर्तव्य बनता है कि क्रांतिकारियों को भी उचित सम्मान दें, उचित व्यवस्था उनके लिए बनाया जाए, उनके बारे में पढ़ाया जाए, उनके बारे में सिखाया जाए। और एक बात और होगी, क्रांतिकारियों के बारे में अगर हमें समझाया जाएगा, पढ़ाया जाएगा, तो एक हमारे अंदर देशभक्ति का जोश का जज्बा जगेगा।
जी ठीक है।
हाँ, अहिंसा से जो जज्बा नहीं जगता है, जज्बा जगता है वीरता की कहानियों से। और जब क्रांतिकारियों को पढ़ेंगे तभी वीरता की कहानियां सामने आएंगी और तभी जज्बा जगेगा और तभी हमारे देश में देशभक्ति की भावना आएगी, धर्म की भावना या जाति वर्ग की भावना नहीं आएगी। और आज हम इसी बात समस्या से जूझ रहे हैं कि हम जाति वर्ग धर्म में बटे हुए हैं, देशभक्ति के नाम, हिंदुस्तानी के नाम तो बोलते ही नहीं, हम बोलते ही नहीं हम हिंदुस्तानी है, हम बोलते हैं बंगाली है, गुजराती है, कश्मीरी है, ठाकुर है, पंडित है, यादव है, शूद्र है, अछूत है, सब बोलते हैं, लेकिन हिंदुस्तानी कोई नहीं बोलता। तो हिंदुस्तानी होने की भावना कैसे आएगी, जब हम वीर लोगों को पढ़ेंगे, जब हमारे अंदर वीरता का जज्बा होगा।
और जो हमारे अंदर एक ये भाव भर गया कि बस हमारा देश आजाद हुआ, महात्मा गांधी ने उसको आजाद कराया, या कुछ दो चार लोगों में सिमट के रह गया है, ये सब उसको थोड़ा हमें विस्तार देना पड़ेगा, हमें बताना पड़ेगा कि किन किन लोगों के योगदान है।
बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, जैसे आप ये मान सकते हैं, अगर परिवार में कोई समस्या आती है तो एक आदमी के कार्य से वो समस्या खत्म नहीं होती, परिवार सारे लोग उस समस्या का निवारण करते हैं।
जी जी,
आजादी हमारे लिए एक समस्या थी, और वो हम ये नहीं मान सकते कि हमारा पूरा देश एक परिवार था कि एक आदमी के इस कार्य करने से हुआ, नहीं हुआ, सबने अपना अपना हक निभाया, सबने अपना अपना कर्तव्य निभाया। अब ये हमारी आज की पीढ़ी की गलती है और हमारे राजनेताओं की गलती है, और ये हमारे जो पाठ्यक्रम है उसमें ये बहुत बड़ी कमी है कि हमने एक हिस्सा तो पढ़ाया और एक हिस्सा नहीं पढ़ाया।
जी जी, जड़ें ही कमजोर रह गई, जड़ों में ही नहीं हमें ये चीज
दिखाई, हमने जड़ में ही भेदभाव कर दिया, तो फूल हमें पूरे कहाँ से मिलते।
जी जी,
हमने बाकी फूल देखे नहीं। तो पाठ्यक्रम में भी कुछ इस तरह का होना चाहिए कि क्रांतिकारियों को भी हम आगे लेके आए, और सरकार की भी ऐसी कोई एक नीति होनी चाहिए कि क्रांतिकारियों को उचित सम्मान मिले, क्रांतिकारी के जन्मदिन पर भी, पुण्यतिथि पर भी कुछ ऐसे कार्यक्रम किए जाए कि जनता उसमें लिप्त हो, जनता उसमें इन्वॉल्व हो। नहीं तो हमारे अंदर वीर रस की भावना कहाँ से आएगी, और जिस देश में, जिस देशभक्ति में वीर रस नहीं है, जज्बा नहीं है, तो फिर देशभक्ति तो अधूरी रह गई ना।
जी, जबकि हमारे यहाँ के देशभक्त तो वो थे जिन्होंने हंसते हुए फांसी के फंदे चूमे।
अगर कल चाइना या पाकिस्तान हम पर हमला कर देता है और हम कहते हैं हम तो अहिंसावादी हैं, पाकिस्तान आप, हम आपके सामने हाथ जोड़े खड़े जाते हैं, आप हमला मत करो, तो क्या चाइना मान जाएगा?
बिल्कुल,
हमें उनसे लड़ना पड़ेगा उनसे।
जी बिल्कुल,
आप अहिंसावादी की बात तब कर सकते हैं कि आप ठीक है उनको हरा दिया, उनको बाद में वापस कर दिया।
हम सर एक आदर्शवादी सोच में जी रहे हैं, व्यावहारिक नहीं हो पा रहे हैं।
आदर्शवादी सोच के लिए भी हमें चाइना के हिस्से पर कब्जा करके तब आदर्श दे सकते हैं कि हमने तुम्हारा हिस्सा वापस कर दिया। आप कब्जा करेंगे उनके हिस्से पर तभी ना वापस देंगे, अगर अपने हिस्सा खोदेंगे तो कहाँ से वापस देंगे आप उनको?
नहीं नहीं, समय की मांग है कि आदर्श नहीं कहला सकते हैं इन बातों को, हम आदर्श नहीं कहते।
उनसे लड़ने के लिए तो हमें कहते हैं सैनिक के तौर पर और वीरता के तौर पर ही लड़ना पड़ेगा ना।
जी जी,
तो अहिंसा तब काम आती है जब हम दोनों में शक्ति भरा। अब उदाहरण ले लीजिए, अगर हम चाइना से कमजोर होते तो पिछले दिनों चाइना से हमारा बहुत ही ज्यादा काफी रिस्क रहा है, तो क्या आप क्या लगता है चाइना कुछ करता नहीं? हम कमजोर नहीं थे, हमने सामरिक तौर पर मजबूत थे, इस करके नहीं हो पाया। हमने अंतर्राष्ट्रीय गुटबंदी इस तरह की जिससे चाइना चुपचाप बैठ गया। अगर हम अहिंसावादी जो हाथ जोड़कर ना तो गुटबंदी करते और ना ही करते, हम उन पर जवाब देते, तो हम क्या करते? हम तो शायद अपना लद्दाख एरिया खो चुके होते।
नहीं, सर्व्यर्थ में हम हिंसा ना करें वो बात गलत है, लेकिन जहाँ जरूरत वहाँ पर हम अहिंसा लेकर बैठ जाए, अहिंसावादी सोच, तो वो चीज नहीं फिर काम आएगी। बिल्कुल
हमारे हमारे सरकार ने हिंसा अहिंसा दोनों का बराबर तुलनात्मक इंटीग्रेशन किया। जैसे हमने अटैक नहीं किया, हमने अहिंसा दिखाई ना,
बिल्कुल बिल्कुल
हमने हमला नहीं किया, हमने अहिंसा का पालन किया। उन्होंने मारने आए तो हमने उनको मार के भगा दिया, ये हिंसा हमने करनी थी, उनको मार के भगाना था, तो हमने अहिंसा निभाई, हमने खुद नहीं मारा। मारना आएगा तो फिर हम मरेंगे थोड़ी,
ये थोड़ी कि सैनिक मारते जाए और हम चुपचाप हाथ पे हाथ धरे बैठे।
अहिंसा का मतलब ये नहीं होता तो मारना है और मार खाते रहो। तो इसलिए सामरिक रूप से कमजोर होना बहुत बड़ा अभिशाप है, हमें सामरिक रूप से मजबूत होना चाहिए। हम अपने क्रांतिकारियों के इस योगदान को भुला ही नहीं सकते कि अंग्रेजों को सामरिक रूप से कमजोर उन्होंने किया था, इसीलिए हम आजादी पाए थे और इसीलिए गांधी जी का जो सपना सच हुआ था।
जी सर, एक दिन पर मैं सुभाष चंद्र बोस जी की बेटी अनीता बोस जी का एक इंटरव्यू आ रहा था, मैं सुन रही थी, तो उन्होंने कहा था कि नेताजी और महात्मा गांधी के बीच एक जटिल रिश्ता था, और उन्होंने ये भी कहा कि गांधी जी को लगता था कि वो नेताजी को नियंत्रित नहीं कर पा रहे हैं, और अनीता बोस जी ने यह भी कहा कि इन दोनों नेताओं का मकसद एक था लेकिन इनके विचार एक जैसे नहीं थे। तो वहीं वाली बात आ गई सामने कि मकसद तो इन लोगों का एक था लेकिन वैचारिक टकराव होता था, लेकिन वो करते करते आज ऐसी स्थितियां बन गई हैं कि हम उनको, मतलब उनके जो विचार थे हमने उनको बिल्कुल नकार दिया है, चाहे सुभाष चंद्र बोस हो या अन्य क्रांतिकारी जितने भी।
उसका कारण ये रहा कि कांग्रेस में एक आजादी के पहले भी अगर आप कांग्रेस का इतिहास देखें तो ये रहा है कि कंट्रोल करने वाली व्यवस्था आजादी के पहले भी कांग्रेस में थी, कि मैं कंट्रोल करूंगा, मेरा अधिकार चले, मेरा वर्चस्व हो। और क्योंकि सुभाष चंद्र जी को कंट्रोल नहीं किया जा सकता था, इसलिए उनको थोड़ा अलग कर दिया गया कि भाई तुम हमसे कंट्रोल नहीं हो सकता, और कंट्रोल नहीं होना चाहते थे सुभाष चंद्र बोस, इसलिए वो अलग होके गए। और यही कारण है कि आजादी के बाद उनके त्याग को, उनके योगदान को हमने नकार, एक तरह से नकार ही दिया है। मैं अपने श्रोताओं से ये अनुरोध करूंगा कि आइए हम गांधी जी के विचारों को तो आगे लेकर चले, लेकिन अपने क्रांतिकारियों को भी उचित सम्मान दें। इसी अनुरोध के साथ मैं अजय आवारा आप
सर, सर मैं ये एक बात कहना चाहूंगी कि हमारे कार्यक्रम का उद्देश्य आज का ये नहीं था कि हम किसी के योगदान को कम करके आंक रहे हैं या हम ऐसा किसी की भावनाओं को चोट पहुंचाना चाहते थे, लेकिन जो चीजें हम लोगों को वास्तव में दिल में चुभन देती हैं उन्हीं को हमने आज यहां पर अपने श्रोताओं के साथ उनकी चर्चा की है।
नहीं नहीं, हम गांधी जी के योगदान को कम नहीं कर रहे हैं, गांधी जी का योगदान अपनी जगह पर कहते हैं सर्वोपरि है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि हम कहते हैं अन्य क्रांतिकारियों के योगदान को कमतर आते हैं। हमारा मकसद ये कार्यक्रम का ये है कि जिनके योगदान को हम भुला चुके हैं उनके योगदान को भी याद किया जाए।
जी सर, और अजय सर आपके हम बहुत बहुत आभारी हैं, आपने हालांकि मुझे मना किया था कहने को लेकिन मुझे कहना पड़ा, आपको आज बोलने में थोड़ी तकलीफ थी तो शायद इसलिए आप थोड़ा कष्ट में बोले हैं, आपको गले में कुछ तकलीफ थी, लेकिन फिर भी बहुत अच्छे आपने हमारे साथ आज की चर्चा की और हमारे श्रोताओं को जरूर आपका कार्यक्रम पसंद आएगा।
लेकिन मैं अपने आपको श्रोताओं से अलग नहीं कर सकता ना।
बिल्कुल, मैंने तो आपसे बोला था कि अगर आपको तकलीफ है तो रहने दें, लेकिन आप बिल्कुल श्रोताओं से अलग नहीं कर सकते, इसीलिए आप आ जाए तो हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं।
बहुत बहुत धन्यवाद।
नमस्कार।